व्यंजना और सत्सई। शब्द शक्तियों में व्यंजना का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ध्वनि का मूलाधार यही शक्ति है। पहले पहल रस की प्रतिष्ठा दृश्य काव्य में हुई और रस सिद्धांत वहीं तक सीमित रहा। नाटक का मुख्य उद्देश्य विभावानुभाव आदि के द्वारा श्रृंगार करुण रसादि की प्रतीत कराना था। इसके लिए आवश्यक था कि नाटक विस्तृत सापेक्ष हो। प्रबंध समन्वित श्रव्य काव्य में भी विभावानुभावाद के द्वारा रस पद्धति शक्य है, पर लघु काय मुक्तकों में रस के सभी अवयवों का सन्निवेश संभव नहीं है, अतएव उन्हें काव्य के अंतर्गत नहीं परिगणित किया जा सकता है। ध्वनि सिद्धांत रस सिद्धांत का ही विस्तार है। श्रव्य काव्य में इसी सिद्धांत के द्वारा रस की प्रतिष्ठा हुई है। वस्तुतः ध्वन्यालोक के पूर्व रस और काव्य का समुचित संबंध स्थापन नहीं हो पाया था। लोचनकार ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। रस ध्वनित होता है, इस बात को स्वीकार कर लेने पर चमत्कारक्षम मुक्तकों में भी रसाभिव्यक्ति की स्थिति मान ली गई। तभी तो आनंदवर्धन ने घोषणा की कि अमरुक कवेरेक श्लोक प्रबंध शतायते। ध्वनि का मुख्य प्रयोजन है प्रतीयमान अर्थ प्रतीत, और यह व्यंजना व्यापार द्वारा ही संभव है। दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि व्यंग्य अर्थ ही प्रतीयमान अर्थ होता है। व्यंजना और व्यंग्य में वही संबंध है जो कारण और कार्य में। जहां ध्वनि होगी वहां व्यंग्यत्व होगा, पर प्रत्येक व्यंग्यार्थ को ध्वनि की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ध्वनि होने के लिए व्यंग्यार्थ को उत्कृष्ट और रमणीय होना चाहिए। इसलिए शास्त्रकारों ने ध्वनि की परिभाषा निश्चित करते हुए स्पष्ट कहा है कि जहाँ पर शब्द और अर्थ स्वयं को तथा अपने अर्थ को गौण बनाकर प्रतीयमान अर्थ की प्रतीत कराते हैं, वहाँ ध्वनि होती है। जहाँ व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक रमणीय और चमत्कारी होता है, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य होता है। यहाँ पर हम अभिधावादियों के मतों का उल्लेख नहीं करना चाहते, जो व्यंग्य के अर्थ के विश्वासी नहीं हैं, और न तो इस स्थल पर उन वितर्कों के उल्लेख की ही आवश्यकता है जो व्यंजना के पक्ष में किए गए हैं। इसी प्रकार लक्षणा में ही व्यंजना को अंतर्भुक्त मानने वाले आचार्यों के विचारों तथा उनके खंडनार्थ प्रस्तुत किए मतों के विवेचन के लिए भी यह स्थल उपयुक्त नहीं है। अंततो गत्वा व्यंजना शक्ति की प्रतिष्ठा होकर ही रही। बिहारी के दोहों का आलोड़न हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि वे ध्वनिवादी थे, इसलिए उनके लिए स्वाभाविक था कि वे व्यंजना की सहायता लेते। उनका समुचित मूल्यांकन करने के लिए उनकी कलात्मक विवेचना के सिलसिले में व्यंजना का विश्लेषण अत्यावश्यक है। आचार्यों के मतानुसार प्रमाणांतर से अनुपलब्ध परंतु शब्द प्रमाण से उपलब्ध अर्थ के प्रति किया गया व्यापार व्यंजना है, जो अभिधा लक्षणा एवं तात्पर्य वृत्ति से प्राप्त न हुआ हो। इससे स्पष्ट है कि व्यंजना शब्द का व्यापार है। यह प्रमाणांतर से अप्राप्त है तथा तात्पर्य वृत्ति से अनुपलब्ध है। प्रमाणांतर का अर्थ है शब्द प्रमाण के अतिरिक्त अन्य प्रमाण, जो संख्या में 7 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य और संभव। यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि जब व्यंजना शब्द का व्यापार है तो व्यंजना के दो भेद शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना क्यों किए जाते हैं? क्या यह वदतो व्याघात नहीं है? इसका उत्तर देते हुए मम्मट ने लिखा है, शब्द प्रमाण वेद्योर्थो व्यनक्त्यर्थान्तरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे ततः शब्दस्य सहकारिता। अर्थात जहाँ शब्द प्रमाण संवेद्य अर्थ पुनः किसी अर्थ की अभिव्यक्ति करे, वहाँ शब्द सहकारी है और अर्थ व्यंजक है। अतः जहाँ शब्द व्यंजक होगा वहाँ शाब्दी व्यंजना होगी, तथा जहाँ अर्थ व्यंजक होगा शब्द मात्र सहायक होगा। शब्द का सहायक होना आवश्यक है, क्योंकि शब्द के आधार से हीन अर्थ की कोई सत्ता नहीं है, वहाँ आर्थी व्यंजना होगी। शाब्दी व्यंजना अभिधा मूला। शाब्दी व्यंजना नानार्थक शब्दों के प्रयोग से मानी जाती है, किंतु शेषालंकार में भी तो नानार्थक शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। तब दोनों में भेद क्या है? इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि शेषालंकार से उद्भूत सभी अर्थवाच्य होते हैं और शाब्दी व्यंजना से अनेकार्थक शब्दों से उपलब्ध अर्थों में एक अर्थ व्यंग भी होता है। यहाँ एक बात और भी ध्यान देने की है, श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग शेषालंकार में भी होता है और शाब्दी व्यंजना में भी। तब सवाल यह उठता है कि एक जगह श्रेष्ठ शब्दों द्वारा प्राप्त सभी अर्थवाच्य होते हैं और दूसरी जगह उन्हीं शब्दों कुष्ठ में श्रेष्ठ शब्दों द्वारा प्राप्त अनेक अर्थों में एक अर्थ व्यंग कैसे होता है? इसके समाधान में यह कहा जाता है कि श्रेषालंकार द्वारा प्राप्त सभी अर्थ या तो प्राकरणिक होते हैं या अप्राकरणिक, परंतु शाब्दी व्यंजना द्वारा प्राप्त अर्थों में कुछ प्राकरणिक होंगे और कुछ अप्राकरणिक। आचार्यों का कहना है कि प्रकरण ज्ञान के कारण अविधा और अर्थ देने में असमर्थ हो जाती है। इसके बाद जिस अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीत होती है वह व्यंजना व्यापार द्वारा संभव है। संक्षेप में श्लेषालंकार और शाब्दी व्यंजना के भेद इसमें निहित है कि पहले दोनों अर्थ या तो प्राकरणिक होंगे या अप्राकरणिक, पर दूसरे में एक अर्थ प्राकरणिक होगा तो दूसरा अप्राकरणिक। इसके स्पष्टीकरण के लिए बिहारी सत्सई के ही दो उदाहरण लीजिए। एक, अजव तरव ना ही रहो श्रुत सेवक एक अंग, नाक बास बेसर लहो बस मुक्तन के संग, श्लेषालंकार। दो, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वेहल धर के वीर, शाब्दी व्यंजना। पहले उदाहरण के दोनों अर्थ प्राकरणिक हैं और दूसरे उदाहरण का एक अर्थ प्राकरणिक है दूसरा अप्राकरणिक। श्लेषालंकार में जहाँ कोशगत चमत्कार है वहाँ शाब्दी व्यंजना के व्यंग्य अर्थ के कारण चारुत्व अधिक आ गया है। इस उदाहरण में केवल अप्राकरणिक अर्थ ही व्यंग्य नहीं है बल्कि दोनों अर्थों में एक सूत्रता स्थापित करने वाला उपमालंकार ही व्यंग्य है। यदि दोनों अर्थ सर्वथा असंबद्ध होते तो कवि की प्रतिभा असिद्ध मानी जाती। संबंध स्थापनार्थ जिस उपमा का आक्षेप यहाँ करना पड़ रहा है उससे दोनों वाक्यार्थों में उपमानोपमेय भाव स्थापित होगा। उपमानोपमेय भाव के कारण जिस विनोद की सृष्टि उक्त दोहे में की गई है वह रमणीयार्थ प्रतिपादक हो गया है। लक्षणामूला, इस व्यंजना का संबंध प्रयोजनवती लक्षणा से है। इसमें प्रयोजन या फल की प्रतीत व्यंजना द्वारा मानी जाती है। लक्षक शब्द के प्रयोग में वक्ता का कोई न कोई प्रयोजन निहित रहता है। यह प्रयोजन सर्वथा व्यंग्य होता है। इस व्यंग्यार्थ की स्पष्टता अस्पष्टता के आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं, अगूढ़ व्यंग्या और गूढ़ व्यंग्या। अगूढ़ व्यंग्या में व्यंग्य अस्पष्ट होता है, अतः गूढ़ व्यंग्या की अपेक्षा इसका काव्यात्मक स्तर नीचा होता है। कुछ उदाहरण लीजिए। एक, फिरत जु अटकत कटन बिनु रसिक सुरस न खियाल। दो, सदन सदन के फिरन की सदन छुटे हरि राय। तीन, प्राण प्रिया ही यमे बसय नख रेखा ससिभाल भलो दिखायो आय यह हरिहर रूप रसाल। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में विपरीत लक्षणा से रसिक का अर्थ अरसिक और हरिराय का अर्थ अप्रतिष्ठा सूचक है। रसिक का लक्ष्यार्थ अरसिक तथा इसका प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ रसिकता लंपटता या आतिशय है। गूढ़ व्यंग्या, अपेक्षाकृत अस्पष्ट होने के कारण गूढ़ व्यंग्या अधिक व्यंजक होती है। एक, लह लहाति तन तरुणई लचि लगी लौ लफि जाय। दो, होमति सुख करि कामना तुम्हें मिलन की लाल। लहलहाना तारुण्य का धर्म नहीं है बल्कि हरे भरे खेतों और हरी भरी क्यारियों का धर्म है। मुख्यार्थवाद से इसका लक्ष्यार्थ हुआ नयनाभिराम भरा पूरा यौवन और प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ हुआ यौवन की संपूर्ण विशेषताओं की पराकाष्ठा। दूसरे उदाहरण में होमति कष्टातिशय का व्यंजक है। आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना में व्यंजना अर्थ का व्यापार है। कुछ विद्वानों के मतानुसार व्यंजना सर्वदा अर्थ का व्यापार होती है, शब्द का नहीं। पर ध्वनिवादियों की दृष्टि से यह असंगत है। आर्थी व्यंजना में अर्थ व्यंग्यार्थ का साधन है, वह अर्थ जिससे व्यंग्यार्थ की प्रतीत होती है, वाच्य भी हो सकता है, लक्ष्य या व्यंग्य भी। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तीनों अर्थों से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है। इसके अनुसार आर्थी व्यंजना के तीन भेद किए गए हैं, वाच्य संभवा, लक्ष्य संभवा और व्यंग्य संभवा। इनके बहुत से उदाहरण सत्सई में भरे पड़े हैं। वाच्य संभवा: एक, तंत्री नाद कवितरस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। दो, घाम घरीक निवारिये कलित ललित अलिकुंज, जमुना तीर तमाल तरु मिलित मालती कुंज। प्रथम दोहे के वाच्यार्थ परस्पर विरोधी बातें व्यक्त करता है। इसका व्यंग्यार्थ होगा कि तंत्री नाद आदि में आकंठ मग्न होने पर ही पूर्ण रसास्वादन होता है। दूसरे उदाहरण में व्यंग्य है, नायिका का स्वैर विहार। लक्ष्य संभवा: कत सकुचत निधरक फिरौ रतियौ खोरी तुम्हैन, कहा करौ जौ जाइये लगै लगौ हैं नैन। लक्ष्य संभवा आर्थी व्यंजना में तीन अर्थों की प्रतीति होती है। लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना में लक्षक शब्दार्थ व्यंग्य होता है, पर लक्ष्य संभवा आर्थी व्यंजना में लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। इस उदाहरण में वाच्यार्थ है संकुचित क्यों होते हो, निधड़क फिरा करो, तुम्हें रत्ती भर दोष नहीं है, यदि ये लगौहे नयन कहीं लग जाएं तो तुम क्या करो। लक्ष्यार्थ यह है, तुम स्वयं दोषी हो, न तो तुम्हें संकोच है और न डर, तुम न जाओ तो क्या तुम्हारी आंखें तुम्हें घसीट ले जाएंगी। इस लक्ष्यार्थ का व्यंग्यार्थ है कि तुम बहुत बड़े निर्लज्ज हो, बेहया हो, यदि तुम चाहो तो अपने स्वभाव को बदल सकते हो। व्यंग्य संभवा: सन सुख्यो बीत्यो बनो उखौ लई उखार, हरी हरी अरहरि अजौं धरि धरि हरि ही अनार। इसमें अरहर की सघनता व्यंग्य है और उससे व्यंग्यार्थ निकलता है बहुत उपयुक्त सहेतस्थल। व्यंग्यार्थ बोध के सहायक: वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों में व्यंग्यार्थ बोध की क्षमता वक्ता थव्य काक वाक्य वाच्य अन्य के सानिध्य प्रस्ताव देश काल तथा चेष्टा के वैशिष्ट्य से प्रादुर्भूत होती है। पर व्यंग्यार्थ की झलक उसी को मिल सकती है जो प्रतिभा संपन्न हो। वक्तृवैशिष्ट्य: इसमें वक्ता के स्वभाव आदि की विशिष्टता जान लेने पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। मुख्यार्थ वक्तृत्व वैशिष्ट्य के संदर्भ में ठीक ठीक नहीं बैठ पाता, ऐसी स्थिति में उससे वक्ता की विशिष्टता के कारण व्यंग्य अर्थ की प्रतीत होती है। लटक लटक लटकल चलल डरत मुकुट की छाह, चटक भरेओ नट मिल गयो अटक भटक बटमा। इस दोहे में वक्तृ वैशिष्ट्य के कारण उसकी प्रेम क्रीड़ा व्यंग्य है। वाच्य वैशिष्ट्य में व्यंग्यार्थ प्रतीति का मुख्य साधन वाच्यार्थ है। वाच्य वैशिष्ट्य: इसमें वाच्य साधन है और व्यंग्य साध्य। घाम घरीक निवारिये कलित ललित अलिपुंज, जमुना तीर तमाल तरु मिलित मालती कुंज। इसके वाच्य वैशिष्ट्य से में देश और काल वैशिष्ट्य भी है। जमुना तीर देश वैशिष्ट्य है और घाम घरीक निवारिये में काल वैशिष्ट्य है। कुष्ठ नायिका की रथ क्रीड़ा की अभिलाषा व्यंग्य है।